الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تصرفون صدق الله العلي العظيم فصل على محمد وعلى محمد. अज़ीज़ गिरामी, आप सबको ईद ज़हरा की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ. और ये सिलसिला सूरह ज़ुमर का जारी है. सूरह ज़ुमर के सिलसिले में इंशाल्लाह हम ईद ज़हरा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ये जो मैंने आयत जो मैंने आयती तिलावत का शरफ़ हासिल करा था, तर्जुमा ये है कि उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा करा, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने चार पायों में तुम्हारे लिए आठ कस्म के जोड़े बनाए, वही तुमको तुम्हारी माओं के पेटों में खल्क करता है, एक के बाद दूसरे तीन अंधेरों में, एक के बाद दूसरे तीन अंधेरों में, यही खुदा तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाहत है, इसके सिवा कोई मालिक नहीं है, माबूद नहीं है. ला इलाहा इल्लल्लाह फ अन्ना तुसरफून, तो तुम कहाँ भेजे जा रहे हो. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. खलकू मिन नफ्सिन वाहिदम, मतलब हजरत आदम से पैदा करा, व जालना मिनहा ज़ौजिहा हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, व अंज़लकुम मिनल अनआमी समाज अजवाज, आठ तरह के जोड़े पैदा करे. उसमें से आठ तरह के जोड़ों में कौन है? गाय, बकरा, ऊंट और भेड़. उसमें डोमेस्टिक भी हैं और वाइल्ड भी हैं तफसीर के हिसाब से. खलकुम मिन बाद खलकिन फिर ज़ुल्मात सलासा, खलकम मिन बाद खलकिन यानि नुतफा और खून का टुकड़ा, नुतफा अलक और मुग़दा. खलकम मिन बाद खलकिन की यह है कि नुतफा अलग और मुग़दा, मतलब लो थोड़ा तीन स्टेजें बनाया. तीन अंधेरों में, तीन अंधेरों की तफसीर यह है, एक तो पेट का अंधेरा, फिर एक बदन का अंधेरा, और तीसरा अंधेरा जो बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड की झिल्ली होती है उसका अंधेरा. तीन अंधेरों में बनाया. ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम, यही परवरदिगार और तुम्हारा खुदा है. लहुल मुल्क, उसी की बादशाहत है. फअन्ना तुसरिफून, तुम कहाँ भेजे जा रहे हो. ये खुदा है, मतलब खुदा अपनी खिलकत को बयान कर रहा है. अब आप सोचेंगे जब अपनी माओं के पेट में बैठे रहते हैं तो यही खुदा हमसे कलाम कर रहा है कि देखो तुम अभी माओं के पेट में बैठे तो हो, तीन अंधेरों में मैं ही हूँ जो तुम्हें बाहर लाऊंगा, लेकिन देखो तुम माओं के पेट में तो हो लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बाहर खाने का इंतजाम कर रखा है. हमको नहीं मालूम था हमारे खाने का इंतजाम क्या है. भेड़े भी मैंने बना के रखी हैं, बकरियां मैंने बना के रखी हैं तुम्हारे लिए, ऊँट भी बना के रखे हैं, ये सारे खाने का इंतजाम मैंने करा है. जब हम आलम अरमा में थे तो हमको हमारे रिस्क का ख्याल नहीं था किस तरह का रिस्क होगा. यहाँ आके हमने देखा हमारा रिस्क ये है. अल्लाह कह रहा है ये रिस्क मैंने बनाया, पहले आदम से हव्वा को बनाया, फिर तुमको तीन हिस्सों में मैंने बनाया और तीन अंधेरों बनाया. ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क, उसी बादशाह. फअन्ना तुसरिफून, दुरूद पढ़ रहे हैं. इस वक्त तो इसने खलकत की बात करी थी, अब ये मौत की बात कर रहा है. यही खुदा है सूरह ज़ुमर में, कि खुदा ही है. अल्लाह अल्लाह यतफल, कहा कि मैं हूँ. पहले कहा खलकुम मिन नफ्सिन वाहिदतन, अब कह रहा अल्लाह यतफल, मैं खुदा हूँ जो लोगों की रूहें मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता हूँ, और जो मरे नहीं हैं उनकी सोते वक्त कब्ज़ कर लेता हूँ, जो मरे नहीं है उनकी सोते वक्त कब्ज कर लेता हूं, और जिस पे मैं मौत का हुक्म कर देता हूं उनकी रूहों को रोके रखता हूं, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता हूं. जो लोग फिक्र करते हैं उसमें उसकी कुदरत की निशानियां हैं. खुदा अपनी बादशाहत का बयान कर रहा है. पहले बादशाहत का बयान ज़ुमर में करा, खलकत कैसे खलक किया, अब बादशाहत का बयान कर रहा है मौत पे. ये दोनों आयतें चुनी गई ताकि खुदा की खिलकत और बादशाहत समझ में आए. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دیتا ہوں اس آیات کی کہ خدا موت کے وقت کہتا ہے خدا کہتا میں ہی ہوں جو تمہاری موت میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں, یہ بات کا یقین کر لو, تم ایمان لے آئے ہو نا, میں ہی ہوں جو تمہاری موت کے وقت تمہاری روح قبض کروں گا, تو تم شک نہ پڑنا کہ تم کس خدا پہ ایمان لائے. اللہ یتفل انفصل ہین الموت ہا واللتی لم تمتو فی منامہا, اور جو مرے نہیں ہیں ان کی سوتے وقت روح قبض کر لیتا ہوں. تو روح سوتے وقت بھی قبض ہوتی ہے, روح سوتے وقت بھی قبض ہوتی ہے, اور جس پہ وہ موت کا حکم کر دیتا ان کو روک لگتا ہے. سوتے وقت روح قبض ہو گئی, جس پہ موت کا حکم ہو جاتا اس کی روحوں کو روکے رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی تفسیر یہ ہے, اس کی تفسیر دو الگ الگ طرح کی ہے. ایک تفسیر میں جو کہ آیت اللہ پویا نے کہا ہے کہ جب موت سوتے وقت کیسے روح قبض ہوتی ہے, کہا کہ جو ہماری کانشسنیس ہے وہ چلی جاتی ہے, ایکسٹرنل ورڈ سے ہماری کانشسنیس چلی جاتی ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ کانشسنیس چلے جانا ہے کہ نفس کی موت ہو جاتی ہے, نفس چلے جاتا ہے اٹھ کے, روح رہتی ہے. بعض روایتوں میں فرمان علی صاحب نے کہا ہے, فرمان علی صاحب نے کہا ہے کہ نفس چلے جاتا ہے روح رہتی ہے. آیا کا پویا نے اس پہ خاموشی اختیار کری, آیا پویا نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل کانشسنیس چلی جاتی ہے انسان کی. نفس اور روح کا راز بڑا گہرا ہے, روح کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم کم ہی دیا ہے. لیکن میں نے دوسرے علماء سے پوچھا اس بارے میں, تو میرے استاد نے مجھے کہا کہ سوتے وقت بھی روح جاتی ہے, شیخ فوزی نے کہا, اور جو سوتے وقت جو روح جاتی ہے اس میں کانٹروورسی ہے. بھائی کا کچھ کا کہنا ہے کہ نفس جاتا ہے, کچھ کا کہنا ہے کہ روح بھی جاتی ہے, ایک روح کا ایک حصہ جاتا ہے, پوری روح چلے جائے تو انتقال ہو جائے گا. جو روح جاتی ہے وہ روح جا کے عالم ارواح میں بھی پرواز کرتی ہے, ملاقاتیں بھی کرتی ہے مرحومین سے, برزخ میں بھی جاتی ہے, یہ روح کی پاکیزگی کے حساب سے ہے. آغا پویا نے کہا ہے کہ یہ جو روح جاتی ہے یہ روح سپر کانشس بھی ہو جاتی ہے, یعنی عرفا کا کہنا یہ کہ جاگتے میں انسان سوتا ہے, جو سوتے میں انسان جاگتا ہے, کیونکہ سپر کانشس ہو جاتا ہے, کیونکہ جب جاگتے میں نفس کا پردہ ہوتا ہے, جب سو جاتا ہے تو روح کی بالادگی پیدا ہوتی ہے, اور اسی روح کی بالادگی میں وہ مرحومین سے بھی ملتا ہے, ائمہ سے بھی ملتا ہے. تو یہ جو بالدگی ہے یہ ایک طرح سے نیند انسان کو ایک طرح کی موت ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں سوتے وقت روح قبض کرتا ہوں اور جن پہ موت کا حکم کرتا ہوں ان کو روکے رکھتا ہوں, باقی کو چھوڑ دیتا ہوں, تو ایک طرح سے روز رات کو آپ کی موت ہوتی ہے, اور اس موت میں اللہ بتاتا ہے کہ آپ کی روح کی کیپیسٹی کہاں ہے اس وقت. اگر آپ کو اچھی زیارتیں ہو رہی ہیں اور آپ پاکیزی سے لوگوں سے مل رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ابھی پوزیشن ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو نائٹ ٹیررز آ رہے ہیں اور شیطان گھیرے ہوئے ہیں تو اللہ بتا دے گا دیکھو ابھی تم کو اپنی سدھار کرنا ہے. صلی اللہ علی محمد. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم دوسری دن اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کاموں میں لگائے رکھتا ہے کہ تم دیکھو ابھی میں نے تمہیں روح کو قبض نہیں کرا ہے. وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَةُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَتِهِ هَلْ هُنَّ ممسکاتی رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل متوکلون. درود پڑھ دیں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کو کس نے خلق کرا تو وہ کہیں گے خدا نے خلق کرا. کہو تو بھلا دیکھو تو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اگر خدا تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو کیا اس کو روک سکتے ہیں, اور اگر خدا تم کو کچھ फायदा पहुंचाना चाहता है तो क्या उसको रोक सकते हैं? कुल हस्बी अल्लाह है, कह दो कि मुझे खुदा काफी है, वो भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। देखिए दो आयतें जो भी पहले पढ़ी थी वो खलकत की पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी मौत की पढ़ी थी। अब ये आयत पढ़ी है, अल्लाह सुब्हान अल्लाह कह रहा है देखो वला इन समल तुम मन खलक अल्लाह समावत अर्द लयकून अल्लाह, अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान जमीन किसने बनाया तो कहेंगे अल्लाह ने बनाया है। ये बात हर एक कहता है, हर इंसान कहता है कि सुपर पावर मतलब सुप्रीम पावर क्रिएटेड, ताहूत भी कहता है, ताहूत भी हर इंसान ये कहता है कि अल्लाह है, ये अल्लाह कहता है। ये जरा गौर की आयतें हैं, ये कहता है ये सब अल्लाह ने करा। तो फिर अल्लाह क्या कहता है कि अगर किसी को अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये रोक सकते हैं उसको, या कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं क्या उसको रोक सकते हैं? कुल हस्बी अल्लाह अला है, हमारे लिए कह दो खुदा ही काफ़ी है। तो खुदा की रहमत क्या होती है, खुदा की रहमत क्या होती है? कुरान की तफसीर करना तो सूरह हम से करना चाहिए इंसान को। कुरान की तफसीर सही चल रही है कि नहीं, उसका जो कंपास है सूरह हम दे। तो अल्लाह की रहमत ये होती है कि जब आपको सिरात अल मुस्तकीम पर डाल दे। सूरह हम से पूछा आप कि खुदा की रहमत क्या है तो कहा सिरात अल मुस्तकीम पर आ जाओ, खुदा की रहमत हो जाएगी। वरना हर इंसान ही कहता है कि देर इज़ अ गाड, हर इंसान ही कहेगा कि देर इज़ अ गाड, तागूत भी यही बोलेगा। तो कहा कि देखो अगर तुमको मेरी हिदायत चाहिए तो सिरात अल मुस्तकीम असल में मेरी रहमत है, दूर पड़
रहा।
अभी आयत तो पढ़ी थी अपनों ने अल्लाह की रहमत की, कुलिल्लाह शफात जमीया लहू मुल्क समावत व अर्द थुम्मा इलैहि तुरजऊन। आज की स्पीच अब शुरू हो रही है, कह दो कि सारी शफात खुदा के इख्तियार में है, उसकी बादशाहत आसमान और ज़मीन में है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सारी शफात का इख्तियार खुदा को है, इसीलिए अपन आयतों की तफसीर हमसे पूछें। इसीलिए अल्लाह सुब्हान तआला ने 34 बार मुसलमानों से कहलाया कि मालिक यौमिद्दीन कहा करा करो, कुलिल्लाह शफात व जमीया। ये आज की स्पीच चल रही है, असल स्पीच पे आ गए हैं अपन। सारी शफात खुदा के इख्तियार में, इसीलिए अल्लाह कहता मालिक यौमिद्दीन कहा करा करो मुझे। कुरान में अगर डिटेल में आयतों में जाएं, आज वो पढ़ नहीं रहे अपन, अगर डिटेल की आयतों में जाएं तो अल्लाह ही चुनता है शफात कौन करेगा और अल्लाह ही चुनता है किसकी की जाए। सूरह अंबिया की 28वीं आयत आप पढ़ लें, उसमें अल्लाह बताता कि मैं बताऊंगा किसकी शफात की जाए। सूरह अंबिया की 28वीं आयत सब पढ़ लें जो भी सुन रहे हैं, ये होमवर्क है। तो बेसिकली शफात पे पहरा है, कौन करेगा इस पर ही पहरा है, किसकी करेगा उस पर ही पहरा है। इसीलिए कुलिल्लाह शफात जमीया, कुलिल्लाह शफात जमीया, ये बात बड़ी आज की स्पीच ईद जहरा की स्पीच चल रही है, ये तवज्जो रहे। तो ये शफात पे तो पहरा लग गया, तो फिर आसानी किधर है? एक दुरूद पढ़ दें, वल्लदीना अश्तबू तागूतु अन याबुदू हा व अनाबू इलल्लाह लहुम बुशरा फबशरिल इबाद। सारे आराम यहाँ हैं, शफात में तो मुश्किल दिख गई ना, अब आराम किधर है? वल्लदीना अश्तबू तागूतु अन याबुदू हा व अनाबू इलल्लाह लहुम बुशरा फबशरिल इबाद। जिन लोगों ने इससे इज्तनाब करा कि तागूत की इबादत करें और खुदा की तरफ रुजू करें, लहुम बुशरा उनके लिए खुशखबरी है, तो मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। दो खुशखबरियां अल्लाह सुना रहा है। अभी शफात है तो मामला सख्त दिखा था ना आप सबको, परेशान हो गए थे हमन, आसानी की नहीं रहा। अल्लाह ने बता दिया वो लहुम बुशरा व बशरी लिबाद, दो जगह खुशखबरी दी है उसी खुदा ने जिसने कहा कि मैं मालिक उम्मीदीन हूँ। कुलिल्लाह शफात जमीया ने क्या कहा इसी सूरह ज़ुमर में, कि जो लोग तागूत से इज्तनाब करते हैं, कि उसकी इबादत करें, वो खुदा की तरफ रुजू करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। फबशर इबाद, तो मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो। तागुत से इज्तनाब, उसकी इबादत से इज्तनाब किसने सिखाया? अहले बैत ने सिखाया ना। अहले बैत ने, 11 इमामों ने इस आयत की तफसीर करी है जिंदगी में दिखा के, कि देखो लहुम बुशरा फबशर इबाद है तागुत से रेजिस्ट करना, तागुत से रेजिस्ट करना। शफात अहले बैत की है लेकिन रेजिस्टेंस में है। मुहर्रम में शफात है, मुहर्रम में शफात है, रेजिस्टेंस जो इमाम हुसैन ने तागुत से रेजिस्टेंस करना सिखाया, ये शफात है। अभी आयत आयत पढ़ दी ना, वल्लजीना तबू तागुत अन याबुदुहा व अनाबू इलल्लाह लहुम बुशरा फबशरिल इबाद, यानी कि तागुत की इबादत से इज्तनाब करो, वो खुदा की तरफ रुजू करो, ये अहले बैत ने सिखाया। कोई कहता कि अहले बैत ने कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया रेजिस्टेंस का, तो मैं उसको नहीं मानता। 11 इमामों ने अपनी शहादतें देके तागूत के सामने उस जिंदान में जाके बताया कि देखो हमने हमारी शहादतें दे दी तागूत के रेजिस्टेंस में, हमने शहादतें दे के बताया कि हमने शहादतें दे दी, और इसी में लहुम बुशरा फबशरिल इबाद है। अहले बैत की शफाअत दरअसल उनका जो सिखाना है तागुत से रेजिस्टेंस करना, आज इधर जहरा पढ़ रहा हूं, यही उनकी शफाअत का रास्ता है जो उन्होंने बताया सूरह हम्द में। एक दुरूद पढ़ रहे हैं, एक तरह से पढ़ा कुलिल्लाह शफाअतु जमीया, जो कुछ भी है अल्लाह के हाथ में शफाअत। दूसरी जगह कहा कि तागुत से रेजिस्टेंस करोगे तो लहुम बुशरा है, अभी पढ़ा ना। अब इस पर एक मैं अल काफी से किस्सा बयान करता हूं, एक दुरूद पढ़ दे। अबू बसीर से मनकूल है कि वो कूफा में रहते थे, उनका एक पड़ोसी था, वो पड़ोसी सुल्तान से मिला हुआ था, सुल्तान क्या काम करता था, ताबूत किया, और वो सुल्तान का पैसा था तो खूब ऐश भी करता था। ये इसी आयत के बिल्कुल बिल्कुल फिट होता है। अब सुल्तान का काम करता था तो पैसा भी आ गया था, तो उसके घर में पार्टियां होती थी, सिंगर भी आते थे, पीता भी था, वो दोनों काम होते थे। तो ये उससे परेशान रहते थे अबू बसीर का, कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करा करा कर तू। तो उसको मालूम था गलत काम कर रहा है, उसके दिल में हिदायत थी। तो ये जा रहे थे हज को, तो वो आया पड़ोसी, कहा के देखें कि आपकी जो मौला है क्या अल्लाह सुब्हान तआला से मुझे दोजख से निजात दिला सकते हैं? तो मैं बात करूंगा मौला से। तो गए अबू बसीर, छठे इमाम की हुजूर में आए, तो कहा कि मौला ऐसा शख्स है। तो मौला ने कहा कि हाँ, अगर वो जो कर रहा है छोड़ देगा तो मैं उसकी शफात की गारंटी लेता हूं और अल्लाह सुब्हान ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। इन्हीं आया था गुजर, तो वो वापस जब आए हज से कूफा में आए, तो कूफा में वो काफी बैठे थे, तो वो भी आके बैठे, पड़ोसी भी। जब सब लोग चले गए तो पड़ोसी ने कहा मेरी खबर क्या कुछ लेके आया? तो कहाँ मिलाया तेरी खबर, क्या खबर लेके आया? तो कहा कि मेरे मौला ने कहा है कि जो तू कर रहा है अगर तू उसको रोक देगा तो मेरे मौला ने शफात की गारंटी ली है कि तू अल्लाह सुब्हान तआला तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। तो ठीक है चले गए। वाकई क्या मौला ने कहा? कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद उस शख्स ने उनको बुलाया, घर पे बुलाया, ये अलकाफी में बयान है। तो जब ये दस्तक दी तो वो शख्स ने कहा तुम अंदर नहीं आ सकते, मेरे पास कपड़े भी नहीं है अभी इस वक्त। तो कहा कि क्या करा तुमने? कहा कि मैंने सारा माल जो मैंने सुल्तान से कमाया था सब दे दिया, अब मेरी हालत यह है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़े तक नहीं है। तो वो शख्स गया और कपड़े लेके आया, कपड़े पहनाए, थोड़े दिन बाद वो शख्स बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो ये आदमी तीमारदारी करने लगा उनकी, और उसको मौत की गशी छाने लगी। तो ये बैठ के आके लोगों ने काफ़ी मदद करी, एकदम मौत की गशी में एकदम उठा और उठ के उसने कहा कि तुम्हारे मौला ने वादा पूरा कर दिया, मुझे जन्नत मिल रही है।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
जब ये उसका इंतकाल हुआ, अबू बसीर जब गए मदीना में तो मौला के पास गए, तो मौला ने खुद ही पूछा कि देखो हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब ये जो मैंने किस्सा सुनाया है, वल्लज़ीना इस्तबू तागूतु अन याबुदुहा व अनाबू इलल्लाहि लहुम बुशरा फबशरिल इबाद, फिट होता है। इसने तागूत से इस्तनाब करा था, इसने तागूत से इस्तनाब करा था और अल्लाह की तरह रुजू करा था इसने। अब इधर क्या कहा, कुलिल्लाह शफात जमीया, अल्लाह ने कहा सारी शफात मेरे हाथ में। मौला ने क्या कहा था, मौला ने कहा था देखो अगर तुम ये सब करना रोक दोगे, ये रोक दोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। दाखिल अल्लाह जन्नत में करता है। मौला ने कहा देखो तुम मेरी शफात जब होगी, जब तुम रोक दोगे तब तुमसे अल्लाह राजी होगा, जब तुम रोक दोगे तब मेरी शफात आगे आने वाली है, अगर तुम न रोकोगे तो। इमाम ने कहा कि कुछ नहीं है। ये वो उस शख्स ने उस वक्त का रेजिस्टेंस दिखाया था, ये जो रेजिस्टेंस जो शख्स का था उस तागूत के खिलाफ, वो एक रेजिस्टेंस था। आज है ईद ज़हरा, अब है ये इमाम जमा की ईद, इनकी इमामत शुरू है और इसकी खुशी में हम यहाँ बैठे हैं। आज हमको और आपको ये करना है कि लहुम बुशरफ बशीर इबाद की अगर जाना है, अगर दोष खुशियां लेना है तो तागूत से रेजिस्टेंस करना है। आज की ईद का मैसेज ये है कि तागूत से रेजिस्टेंस करना है। शफा जो एहले बैत ने सिखाई, वो सिखाई इसमें मुहर्रम में और सारी शहादत जो इमाम होती है, तागूत से रेजिस्टेंस सिखाया। और मौला ने कहा देखो हम कितनी लाचारी मजलूमत में शहीद हुए, जब बाहर आएंगे तो ऐसे लाचार ना होंगे। वो ऐसे लाचार इसलिए नहीं होंगे, लोगों में एक फौज रेजिस्टेंस की तैयार हो चुकी होगी, जो कि हक कुरान को समझ लेंगे, हक शफात को समझ लेंगे, नुसरत इमाम को समझ लेंगे। इसीलिए है कि जब मौला का जहूर होगा तो किताबों में क्या जिक्र है, कुछ कंडीशन है, जब तक मौला जहूर नहीं होगा उसमें एक कंडीशन है, अल यमानी का खड़ा होना, वो खुरासानी का खड़ा होना। अल यमानी और अल खुरासानी वो लोग हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए खड़े होंगे। तो ये दलील है कि जब तक कि हम रेजिस्टेंस के लिए खड़े ना होंगे, मौला ना आएंगे। अल्लाह नज़ल हसन अल हदीस किताब मुतशाब मतानी तख्शो मिन रूह मिनहु जुलूदुल्लज़ीना यख्शोना रब्बहुम सुम्मा तलीनो जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाह यहदी मैं बिही मैं यशाउ व मैं युज़िल्लुहु फ़मा लहु मिन हाद। अल्लाह ने सबसे अच्छी बातें नाजिल करी हैं, यानि के किताब जिसकी आयतें बाहर मिलती रही हैं, दोहराई भी जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उससे उनके खालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खाले और दिल नरम होकर खुदा की याद की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। ये खुदा की हिदायत है, जिसको चाहता देता है, और जिसको खुदा गुमराह करे सो कहीं हिदायत नहीं मिलती। तो अजीज़ा ने गिरामी, जो हमारी खालों के रोंगटे खड़े होते हैं वो होते हैं खुदा के चेहरे की ज़ियारत करके। कुरान हकीम जब पढ़ते हैं तो खुदा का चेहरा जाहिर होता है, जिसका जिक्र मौला मुत्तकियान ने दुआ कुबल में करा है, खुदा के चेहरे का जिक्र। वाकई खुदा का चेहरा जाहिर होता है इंसान को। इसी तरीके से जिस तरह से कुरान हकीम में आयतें दोहराई जाती है, उसी तरीके से हमारे 12 इमाम हैं कि इनको भी दोहराया गया है, एक के बाद एक आयतें जो दोहराई गई हैं। रसूल अकरम ने कहा कि हम खुदा का चेहरा हैं। जिस शख्स ने भी 12वीं की ज़ियारत करी, जिस शख्स ने भी 12वीं की ज़ियारत करी, अल्लाह सबको नसीब कराए, उसकी भी यही हालत होती है जो कुरान सुन के जो रोंगटे खड़े हुए हालत होती है। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। आज इमाम हमसे ये पूछ रहे हैं कि देखो तुम तागूत के रेजिस्टेंस के लिए तुम क्या कर रहे हो। सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो हम ये कर सकते हैं कि हमारी बेसिक इस्लामिक वैल्यूज पे कायम रहे, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर, रहबर। सबसे छोटा रेजिस्टेंस ये कि हम इस्लामिक वैल्यूज पे कायम रहें। सबसे छोटा रेजिस्टेंस, उसके बाद जबान से या हाथ से जो भी कर सके इस तरीके से करें कि जो भी जो कि शरीयत की हदें हैं कि हम अपने आप को हलाक ना करें क़िबला बैठे हुए, लेकिन हदों में रहकर जिस कर जितना कर सकते हैं करें और दुआ करें कि मौला का जहूर हो तो हम उस जहूर में शारी में दुरूद पढ़ते हैं
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा अला मुहम्मद।
क़िबला कुछ पढ़ दें आप।